तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग छठवें अध्याय ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले अध्याय 5 को रिपीट करेंगे, रिकैप करेंगे और उसके बाद अध्याय 6 पे जाएंगे। आप लोगों ने अध्याय 5 में सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो प्रश्न था कि मैं संन्यास ले लूं या युद्ध करूं, वो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उसका प्रश्न देते हुए उस अध्याय में बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किया। उसमें 4 चीज़ें मुख्य हैं जिसमें भगवान ने बताया, सबसे पहले कि संसार में रहते हुए कर्म करो और कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करते हुए चलो। साथ साथ में भगवान ने बताया कि संसार में रहते हुए व्यक्ति के जब भी कोई कार्य करता है तो करने वाले 3 लोग होते हैं, एक आत्मा जो डिजायर करती है और परमात्मा जो उसको सैंक्शन करता है और तीसरा प्रकृति जो उसको करती है। तो प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति करने वाली है और बाकी दोनों एक डिजायर करने वाला, एक सैंक्शन करने वाला है। फिर भगवान ने उसके बाद इक्वल विजन, समभाव, समदृष्टि के बारे में बताया और अंत में फिर भगवान ने शांति का सूत्र बताया, किस प्रकार से कोई शांति प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये शांति सूत्र पे हमने छोड़ दिया था कि इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ऐसा करके हमने बोला था। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमने मेरे से उपदेश मांगा था और मैंने इस प्रकार से तुमको उपदेश दिया, तुमको मोटिवेट किया, अभी तुम क्या करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो अनासक्ति के साथ। युद्ध के रिजल्ट से बिल्कुल आसक्त मत हो, हारोगे जीतोगे क्या होगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, उस सबसे आसक्त मत हो और मेरे प्लेजर के लिए युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। जब तुम ऐसा करोगे तो जितने भी तरीके के पाप हैं, तुम्हें डर है ना कि मुझे पाप लगेगा, उन पापों से तुम बच जाओगे, उन पापों से बचोगे और साथ साथ में तुम धर्म की संस्थापना करोगे। धर्म की संस्थापना करने से तुमको यश मिलेगा और यश मिलने से क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा। और अगर तुम इस युद्ध को छोड़ दोगे तो तुमको पाप लगेगा। क्षत्रिय धर्म जो है उसको अगर तुम नहीं पालन करोगे, उसको नहीं मानोगे तो तुमको पाप लगेगा। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया। साथ साथ में भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म के फलों को त्याग दो। अर्जुन पूछ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कर्मों को त्याग देना चाहिए और जंगल चले जाना चाहिए या फिर युद्ध करना चाहिए। तो भगवान ने उसको कर्म फल को, भगवान को त्यागने को कहा। उन्होंने कहा कि यह मत करो कि कर्मों को मत त्यागो बल्कि कर्म फलों को त्याग दो। इस तरीके से उन्होंने बोला कि संसार में रहते हुए कर्म करो लेकिन कर्म के फलों को मुझे अर्पण करते हुए करो। इससे क्या होगा, तुम्हें उन कर्मों का फल का जो आसक्ति और अनासक्ति के कारण दुख मिल रहा है वो नहीं मिलेगा और तुम्हारे कर्म जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद भगवान ने इन 3 कर्ताओं के बारे में बताया। 3 तरीके के डुअर होते हैं, जीव, प्रकृति और परमात्मा। जैसे कभी कभी कोई बच्चा पिताजी से कुछ बुक खरीदने के लिए पैसे मांगता है तो पिताजी माँ से कहते हैं कि तुम इसको पैसे दे दो और माँ उनको पैसे दे देती है। वैसे ही भगवान हमारे परम पिता हैं और प्रकृति वो हमारे माँ के समान है, तो भगवान सैंक्शन करते हैं कि हाँ इसको पैसे दे दो, तो प्रकृति जो है वो कर देती है। तो सबसे पहले वो जीव यानी कि वो इच्छा करता है और उसके बाद प्रकृति वो कार्य कर देती है परमात्मा की इच्छा से। तो जब भगवान सैंक्शन करते हैं तभी कुछ हो सकता है प्रकृति के द्वारा, बिना भगवान के सैंक्शन किए कुछ भी संसार में संभव नहीं है, भले ही जीव इच्छा करे या प्रकृति कुछ करने का सोचे भी, लेकिन जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो लोग पूछते हैं कि इसको जान के फायदा क्या है। तो इस संसार में भविष्य में क्या होगा, और ये चार दुख उनसे कोई कैसे बच सकता है, और ये चार दुख हमको मिलते क्यों, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो इस संसार में हम लोग अपने आप को कर्ता समझते हैं, व्यर्थ ही कर्ता होने का सोचते रहते कि हम करने वाले हैं, वी आर द डूअर्स। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद वृंदावन मंदिर में हेड मसाज करवा रहे थे, एक भक्त उनके जो है उनके सर सिर की मसाज कर रहे थे। तो उसी समय एक चिड़िया आई और वो कुछ ग्रास ले कुछ घास लेके आई, वो अपना घोंसला बनाना चाहती थी। तो वहाँ पे एक छोटा सा छेद था, एक ईंट वहाँ से निकली हुई थी, तो चिड़िया ने वहाँ पे वो घास को रख दिया। अभी प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मुझे डिस्टर्ब करती है, चिड़िया यहाँ पे आके रहती है और मुझे परेशान करती है, क्योंकि वो चो 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 कुछ न कुछ करती रहती है, तो मुझे डिस्टर्ब होता है जब भी मैं बुक्स लिखता हूँ उसमें। तो एक भक्त ने क्या किया, वो जो उसने घास लेके आई थी उसको वहाँ से हटा दिया, हटा के फिर अपना मसाज करने लगा। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया फिर से वहाँ पे आई और उसने फिर से देखा कि अरे किसी ने घास रिमूव कर दिया, हाँ चलो फिर से रखी उसने घास, और इस तरीके से उस भक्त ने फिर से वो घास को हटा दिया वहां से। इस बार भक्त ने क्या किया, वहां पे कागज का एक बॉल बनाया और उस जगह पर रख दिया। तो ये चिड़िया वापस आई, इसने देखा अरे किसी ने यहाँ पे कुछ रख दिया है, और फिर अपनी पत्नी को भी बुला के लाई चिड़िया, हाँ जो भी। तो दो लोग आके उसको निकलने का प्रयास करने लगे, तो निकल गया, फिर से उन्होंने घास ला के रख दिया। अभी इस भक्त ने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ला के वहां पर रख दिया। अभी इस बार ये लोग आए और बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ भी कर नहीं पाए, फिर उन्होंने सोचा चलो अब यहाँ से निकल जाते हैं। अभी प्रभुपाद जी ये सब देख रहे थे, प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य देखते हैं, कहते हैं कि देखो इस संसार में सारे जीव जो हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन ये जो माया देवी है सारे प्लानों पर मिट्टी फेर देती है। वो नहीं समझ पाते कि कौन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आता कि ये कर कौन रहा है, लेकिन माया देवी ये सबको सारे प्लान को खत्म कर देती है। तो जैसे किसी किसी की भोग की इच्छा होती है, जैसे खाने की इच्छा होती है, बहुत बहुत खाने की इच्छा होती है, बहुत टेस्ट लेने की इच्छा होती है, लेकिन क्या होता है हम उतना ही खा सकते जितना हमारा पेट हमको अलाउ करेगा, उसके बाद अगर हमारी इच्छा भी होगी तो भी हम खा नहीं सकते। तो शास्त्रों में वर्णन है कि ये जो भोग है इस संसार में, ये भोग जो है नमक की तरह है, नमक जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए खाने में, अगर कम हुआ तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो हम खाने को फेंक ही देते हैं। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति कैसी है, एक लिमिट में है, वो भी लिमिट के अनुसार है, जैसे 6 घंटे से सोना और एक लिमिट में खाना, ये सारी चीजें इंद्रिय तृप्ति में आती है। अगर कोई इसको बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे 6 घंटे के बजाय 10 घंटे सोने का प्रयास करता है, 12 घंटे सोने का प्रयास करता है, ये खाना जो है उल्टा सीधा खाता है, ज्यादा खाता है, तो फिर वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो माया देवी जो है बहुत सारी व्याधि यानी कि बीमारियां देती हैं अलग अलग तरीके के भोगियों को, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे भोग के साथ साथ वो व्याधि भी प्रदान करती है। जैसे आप सभी को पता है अभी पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना आया हुआ है, जो कहाँ से है, जानवरों से या फिर पक्षियों से आया हुआ है। तो अभी वो मनुष्य के संसार के मनुष्यों में इतना उसका जो है खतरा बना हुआ है कि हर व्यक्ति डरता है किसी से भी बात करने, किसी को भी टच करने में, कुछ भी खाने पीने में। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वहां पे दो चिड़िया जो हैं वो घोंसला बनाने का प्रयास कर रहे थे, अभी वहां पे ये कार्डबोर्ड रख के कौन उनको डिस्टर्ब कर रहा है वो नहीं जानते, लेकिन वो और मेहनत करने का प्रयास करते रहते हैं। तो वैसे ही माया देवी जो है इस संसार में इतनी शक्तिशाली है कि वो जीवों के प्लान जो है उनको वो खत्म कर देती है। इसलिए उसकी तुलना छाया से किया गया है, भगवान की छाया से किया गया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, उसका साधन होता है, उसमें से शक्ति वो माया देवी का है। और साथ साथ में दूसरा भगवद गीता में बताते हैं भगवान, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो मेरी माया है ये दुरतया है, दुरतया का अर्थ होता है इससे पार पाना जो है बहुत कठिन है। कोई भी इससे पार नहीं पा सकता, वो वेरी डिफिकल्ट टू कम ओवर। लेकिन ये क्या है, भगवान की दास है, भगवान की दासी है। तो दैवी ही ऐसा गुणमय मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण ले लेता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ते, ये माया जो है उसको छोड़ देती है, उसको फिर परेशान नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति जो कि जड़ है और उसकी अधिष्ठात्री जो है वो दुर्गा जी हैं, और वो दुर्गा जी किसकी आज्ञा से काम करती हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा से कार्य करती हैं। वो भगवान कृष्ण की ऑर्डर को सुन के उसके हिसाब से ही कार्य करती हैं। भगवान ही आज्ञा देते हैं तभी सूर्य जो है वो निकलता है, भगवान ही आज्ञा देते हैं तो इंद्र जो है बारिश करता है, और भगवान ही आज्ञा देते हैं तो यम जो है वो लोगों के जीवन को हर लेते हैं। तो भगवान जो है कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैसे, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, दूसरों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं। तो भारत सरकार अच्छे लोगों के केयर डायरेक्ट प्रधानमंत्री करते हैं, और बुरे लोगों के केयर जो है जेल में जेलर करता है। तो वैसे ही भौतिक संसार में माया देवी उन लोगों की केयर करती है जो बुरे लोग हैं, जैसे कि हम लोग, और आध्यात्मिक जगत में भगवान स्वयं अच्छे लोगों की केयर करते हैं। तो भौतिक संसार वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, और अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है आध्यात्मिक संसार। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान खुद उसका ख्याल रखते हैं, भगवान खुद वहां पर टेक केयर करते हैं, हर चीज का लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन यहां इस भौतिक संसार में ये माया देवी कार्य करती है। तो जो भी यहां पे आता है उसको दुर्गा जी के अंडर में रहना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ इच्छाएं करते हैं पर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, या कभी कभी करते हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान उसको सैंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर भगवान सैंक्शन कर देते हैं तो प्रकृति उसके अकॉर्डिंगली कार्य करती है, और अगर भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं तो प्रकृति जो है उसको उतना ध्यान नहीं देती, नहीं करती। तो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, जैसे कि अभी एक कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हा? हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इवन बाहर निकलना चाहें तो बाहर भी नहीं निकल सकते। तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला एक कंपनी, वो 900 करोड़ रुपए की कंपनी, उनका टर्नओवर वगैरह पूरा जो उनकी स्थिति थी वो 900 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में उनकी कीमत जो है 200 करोड़ ही रह गई, 700 करोड़ का घाटा हो गया उनको। और लोग घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हा? तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें चलो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती जिसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, जाके ही काम होगा। तो आप सोचिए एक जीवाणु जो कि हम लोग देख भी नहीं सकते, उसने पूरे विश्व को डांस करा रहा है अभी। और जब ये कोरोना खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, और मंदी के कारण क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। और हो सकता है अगर ये कोरोना ऐसे ही चलता रहे तो कुछ कुछ समय के बाद हो सकता है खाने पीने की भी दिक्कत आ जाए, हमें खाने के लिए भी अन्न ना मिले। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब हमारे अंडर में नहीं है, बल्कि इसको कोई और नियंत्रित कर रहा है। मनुष्य जो है वो इस भौतिक संसार के फुल कंट्रोल वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, हाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो कौन इसके पीछे है ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, तीन तरीके के डूअर्स होते हैं, वो कौन है, जीव जो कि इच्छा करता है, और परमात्मा जो कि सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति जो कि उसकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ये तीन चीजें। तो हमें इन तीनों के बारे में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसे कोई पुत्र जो होता है वो गलत व्यवहार करता है अपने पिता से तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं, पिता उससे नाराज हो जाते हैं, वैसे ही जो अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो भगवान माया देवी को ऑर्डर करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, गायों की हत्या कर रहे हैं, बिना विवाह के जो है वो यौन संबंध रख रहे हैं, इतना सारा जो है गर्भपात इत्यादि हो रहा है, इतने पतित हैं वो लोग, हाँ ये लोग लातों के भूत हैं, तो भगवान के कहने के अनुसार माया देवी हमसे वैसा ही व्यवहार करती है। तो ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। फिर तीसरा था इक्वल विजन यानी कि समदृष्टि। तो समदृष्टि मतलब पंडिता समदर्शिना, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चयो सोपाक्य चा पंडिता समदर्शिना, कि जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण होता है वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक चांडाल को, एक हाथी को, सबको एक भाव से देखता है, ये हमने सुना था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शांति सूत्र के बारे में, पीस फार्मूला, वो क्या था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इन तीन चीजों को जान लेता है कि सारे तपस्या और यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, सारे लोकों का महेश्वर मैं हूं, और मैं सारे जीवों का सबसे ज्यादा भला चाहने वाला हूं, सब उनका सुहृद हूं, वो क्या करता है, वो शांति को प्राप्त करता है, शांति लाभ करता है। तो तीन चीजें यहां पे बताई गई। सबसे पहला भोक्तारम, ये पांचवें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक है। पहला है भोक्तारम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो सबसे पहले बात करते हैं भोक्तारम की। यज्ञ तप जो कुछ भी है भगवान कहते हैं मेरे लिए करना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि भगवान ये अपने लिए क्यों करवाना चाहते हैं, हम अपने लिए, अपने स्वयं के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, इस संसार में एक मुखिया होता है, हर जगह आप देखेंगे ना, कहीं कहीं मुखिया होता है कोई ना कोई। जैसे घर में पिता होता है, वो मुखिया होता है। हाँ, कोई राज्य है, राज्य में एक चीफ मिनिस्टर होता है, वो मुखिया होता है। एक देश होता है, उसका मुखिया भी होता है, प्राइम मिनिस्टर। कोई कंपनी है, उसका चेयरमैन है, उसका सीईओ होता है। हाँ, कोई भी ऐसी संस्था आप बताइए, कोई भी, कि जहां पे कोई भी लीडर ना हो, चाहे रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, कोई ना कोई एक मुख्य व्यक्ति रहता है, प्रेसिडेंट रहता है जैसे वहां पर। तो हर जगह ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर रहता है जो लीडर होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी उस लीडर को नहीं, उस संस्था में रहने वाले लोग अपने लीडर को ही नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई नाव है, नाव में वो रेस वाली नाव होती है, उसमें 10 लोग नाव चलाने के लिए बैठे हुए हैं, और लीडर कह रहा है, 11वां है लीडर, लीडर कह रहा है कि आगे की तरफ चलाओ, 5 लोग आगे की तरफ चला रहे हैं, 5 लोग पीछे की तरफ चला रहे, तो कैसे चलेगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें लीडर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे से पूछो, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो, बोले हाँ। क्यों कर रहे हो पढ़ाई, क्योंकि मैं मम्मी अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं जब फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा तो मेरी माँ जो है मुझे प्रसन्न हो जाएगी। अगर कंपनी में आप किसी वर्कर से पूछोगे तो बोलेगा मैं अपने बॉस को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जिससे वो मेरे को इंक्रीमेंट कर दे, हाँ मेरा प्रमोशन हो जाए। तो कंपनी में इस प्रकार से बहुत सारा वो काम करता है और इंक्रीमेंट पाता है, फिर वो सोचता है कि अगर मैं और ज्यादा पैसे लेके जाऊंगा घर पे तो मेरी बीवी मुझसे प्रसन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। वैसे ही सेम तरीके से भगवान हमसे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उसे बहुत दुख मिलता है, और तो और वो व्यक्ति भी कभी प्रसन्न होता भी नहीं। आप कितने ही कोशिश कर लो किसी को प्रसन्न करने की, वो 100 चीजें आप अच्छी करो वो उनको भूल जाएगा, एक धोखे से गलती हो जाएगी ना उसको याद रखेगा। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मैं किसी की भी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता हूं, मैं तो पत्थर जैसा हूं? नहीं, जब तक आप चेतन हैं आप किसी न किसी प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, पसीना आएगा, त्याग आएगा, सुबह सुबह विराट से बैठेंगे, चर्च गेट तक जाएंगे, लोकल में खड़े खड़े परेशान होते हुए, हर चीज व्यक्ति करता है ना, किसी किसी को प्रसन्न करने के लिए करता है, खाना सोना कुछ भी। तो शास्त्र बोलते हैं कि आप अगर इस तरीके से प्रसन्न करो, किसी को प्रसन्न करना चाहते हो, कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करो, लेकिन हर कोई आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। अभी कोई व्यक्ति अपनी किसी कंपनी में नौकरी करता है, वहां से सैलरी लेके आता है, वो अपने घर वालों से पूछे क्या तुम सैलरी से खुश हो, जितना मैं पाता हूँ। बोलते हाँ ठीक है, अगर और लाते तो और अच्छा रहता, और चाहिए, ये वाला एग्जाम दे दो प्रमोशन मिल जाएगा, ये वाला एग्जाम दे दो दूसरी अच्छी कंपनी मिल जाएगी, वहाँ पे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखो ना तुम्हारा भाई वो अमेरिका में है, कितना सारा पैसा लाता है, तुम्हारे परिवार में दो पुत्रियाँ हैं, उनकी शादी करनी है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम भी अमेरिका जाओ, जाओ और पैसा लेके आओ। इस तरीके से उनकी इच्छाएँ समाप्त नहीं होती और वो व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करता है फिर भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाता। सोचता चलो अच्छा ठीक है, अभी मैंने देख लिया मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, चलो मैं समाज सेवा करूंगा या फिर देश सेवा करूंगा जैसे गांधी जी करते हैं। लेकिन गांधी जी ने देश सेवा किया फिर भी उनको क्या मिला, किसी ने उनको गोली मार दी। अभी ऐसा आदमी था गांधी, वो कुछ उसके पास बेचारे के पास केवल एक धोती पहनता था, कुर्ता तक नहीं पहनता था, पूरे देश की भलाई के लिए, लेकिन फिर भी मार दिया गया उसको। तो इस संसार में हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। जो ऐसा सोचता है कि संसार में हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, जो भी ऐसा सोचता है कि संसार में हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, समझ लीजिए वो गलत फहमी में जीवन जी रहा है, नहीं हो सकता। तो कोई अगर इंटेलिजेंट पर्सन है वो सोचता है, देखता है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और जिस प्रकार ये उंगली जो है एक पूरे शरीर का अंश होता है, उंगली अपने अन्य उंगलियों के साथ भोजन को लेती है प्लेट से और उसको मुख तक लेके जाती है, और मुख के द्वारा वो पेट में पहुंच जाता है। जो तो जैसे देखा जाता है कि हर बॉडी का पार्ट जो है वो पेट के लिए कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है, तो फोर व्हीलर चलाते समय उसकी आंखें जो हैं आगे की तरफ देखती हैं, पीछे की तरफ ध्यान देना पड़ता है उसको, कान से उसको हॉर्न सुनने पड़ते हैं, और साथ साथ में स्टीयरिंग होती है उसे हाथ से चलाना पड़ता है, गियर लगाने होते हैं हाथ से, और एक्सीलेटर और ब्रेक क्लच ये सब पैरों से करना होता है। तो इतने सारे अंग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है तो खाना किसको मिलता है, पेट को खाना दिया जाता है। अब कोई कहे नहीं हाथ ने भी काम किया, हाथ को ही खाना दे देंगे, चलो हाथ के पास थोड़ा खाना रख देंगे, या फिर कोई कहे नहीं पैरों ने भी काम किया है, आंखों ने भी काम किया, चलो आंख के ऊपर थोड़ा खाना रख देते हैं, नाक के अंदर थोड़ा खाना दे देते हैं, कान के अंदर थोड़ा खाना दे देते हैं, उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसको संतुष्टि कब मिलेगी, जब उसको पेट को खाना दिया जाएगा। जब पेट को खाना मिलेगा तो वास्तव में उसके सारे अंग जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, हम भारत की प्रजा हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, है ना, टैक्स देना रहते हैं गवर्नमेंट को। तो वैसे ही हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के अंश हैं, तो हमको भी भगवान की सेवा में कुछ करना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमसे संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमें परमानंद प्राप्त होगा। इसी का अर्थ है कि भगवान क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, सारे तपस्याओं के भोक्ता हैं। भगवान हमसे कुछ ज्यादा मांग नहीं करते हैं, क्या मांगते हैं, तुलसी दे दो, थोड़ा दूध, इवन अगर दूध भी नहीं चलो पानी दे दो मुझे, पत्र पुष्पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त अप्रचति, पत्ता दे दो कोई, पुष्प दे दो, फल दे दो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अभी कोई कंपनी का बॉस होगा वो बोलेगा आपसे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो मैं उसी से खुश हो जाऊंगा, नहीं, भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। सुदामा वो भगवान के पास क्या लेके गए थे, थोड़ा सा पोहा लेके गए थे, वो भी कच्चा, भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। और ऐसे एक फल बेचने वाली स्त्री थी, उसने भगवान को कुछ फलों को देख के प्रसन्न कर लिया था। ऐसे ही विदुर जी की पत्नी, उन्होंने बनाना केले के छिलकों को देख के भगवान को प्रसन्न कर लिया। क्या साथ में था, प्रेम साथ में था, प्रेम पूर्वक अगर हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान उस श्लोक में कहते हैं, यो मैं भक्त्या प्रचति तदहम भक्ति व्रतम अस्नामी प्रेतात्मना, जो भक्ति के साथ प्रेम के साथ मुझे कुछ भी अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल इत्यादि, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो जब प्रेम होता है तब छिलका भी स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को अपना सेंटर ऑफ पॉइंट बनाना चाहिए, केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, जो कि हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ हमको दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, कि जैसे तुम अपने लिए कार्य कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हो, अपने देश के लिए कार्य कर रहे हो, ऐसे मेरे लिए कार्य करो। फायदा क्या होगा? भगवान कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो ये है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता, सारे तपस्याओं के भोक्ता भगवान। और दूसरा आता है सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोल करने वाले, महेश्वर मतलब जो कंट्रोल करते हैं उनको कंट्रोल करने वाले, सारे लोगों के जो कंट्रोलर हैं उनको भी कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान कहते हैं मैंने सब कुछ क्रिएट किया है। हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ क्रिएट किया है, पर वास्तव में मास्टर और क्रिएटर कौन है? कृष्ण है। हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ जमीन है, हम मान लेते हैं हम इसके मालिक हैं, कुछ कागज गवर्नमेंट से ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसके मालिक हैं। जमीन हमारी है, घर हमारा, ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक रहता है, फिर वो व्यक्ति मर जाता है, फिर उसका बेटा सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो समय के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वास्तव में किसकी है? वो भगवान की है। हाँ, सब भूमि गोपाल की, सारी भूमि किसकी है? गोपाल की है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से वो बूंदी लेके आए जिससे लड्डू बनता है, आप बूंदी लेके घर में आए तो क्या हुआ? चींटियां हो गई उस बूंदी में। फिर आपने चींटियों को हटाने के लिए क्या किया? उसको जाके धूप में रख दिया। तो धूप में रखने से क्या हुआ? चींटियां भाग जाती हैं। तो अभी बीच में चींटियां सोचने लगी थी कि ये बूंदी हमारे लिए आई है, ये मेरी है, हमारी है, लेकिन क्या हुआ? धूप आई तो उनको जाना पड़ गया। ठीक वैसे ही हम लोग भी कुछ देर के लिए समझ लेते हैं ये संसार में ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, हम भी वैसे समझ लेते हैं। तो जब कोई जन्म लेता है तब उसका हाथ बंधा रहता है, बंधा रहता है मतलब चीजों को पकड़ने का प्रयास करता है, पकड़ लूंगा जमीन को, पैसा को, स्त्रियों को, पुरुष को इत्यादि। लेकिन जब कोई मरता है तो उसके हाथ क्या होते हैं? खुले हुए रहते हैं। तो इस तरीके से हम जन्म लेते हैं, पकड़ते हैं और मृत्यु होती है, छोड़ते हैं, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, अगले जन्म फिर से लेंगे, फिर पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस सबका कोई भी संसार में मतलब नहीं है। तो वास्तव में ईश्वर कौन है? भगवान है। वो सारे लोगों के ईश्वर हैं, सारे लोगों के कंट्रोलर हैं, उनके मालिक हैं। फिर तीसरी चीज भगवान बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं इस संसार में जो भी लिविंग एंटिटीज हैं उन सबका मैं वेलविशर हूं, उन सबका भला चाहने वाला हूं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं मेरे बच्चों का सिखाऊंगा नहीं तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट, 13-14 साल में वो अपने पिता माता को बोलते हैं आप अपना काम करो, हमें अपना काम करो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करो। तो उनके माता पिता जो हैं बहुत हताश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि संसार में लोग सोचते हैं कि वे दूसरों की भलाई कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। क्या है वो? अगर वास्तव में आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे पापों से रहित बनाना होगा। जब तक उसके हृदय में पाप है वो भला उसका नहीं हो सकता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हितेरतः। तो एक बार की बात है, मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे 10 रुपए रोज मिलते थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति, एक भिखारी था, वो ऐसे ही भीख मांगता रहता था रोज, जहाँ से मेरा रास्ता गुजरता था वो हमेशा भीख मांगता हुआ उधर दिखाई देता था। तो मैं उसको रोज 10 रुपए दे दिया करता था। एक दिन मैंने देखा जब स्कूल से वापस आ रहा था तो सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा अरे तुमको मैंने पैसे सुबह दिए थे, तुम सिगरेट पी रहे हो? तो बोला हाँ साहब, अगर दिन भर का 100 रुपया हो जाता है मेरा, 100 रुपया से ज्यादा हो जाता है तो मैं सिगरेट पीता हूँ, और अगर 250 से ज्यादा हो जाता है तो दारू पीता हूँ। मैंने कहा अरे, उसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था। तो देखिए अभी उस व्यक्ति पे दया करते हुए हमने क्या किया, उसको कुछ रुपए दिए और उसने उन रुपयों को क्या किया, गलत कार्य में लगाया। तो क्या हुआ, हम चाह रहे थे कि भलाई हो लेकिन उल्टे क्या हो गया, हमको पाप लगेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। तो सबसे पहले अगर हम किसी की भलाई चाहते हैं तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि उसका चित्त जो है वो मल से शुद्ध है कि नहीं है, उसके चित्त में किसी प्रकार की का मल तो नहीं रह गया है, तो वो हमें बहुत जरूरी है देखना। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे मैं नित्य दान करना चाहता हूं, तो शास्त्र कहते हैं कि जो आपको शरीर मिला है वो शरीर भगवान ने दिया है, वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नित्य दान करना चाहता हूं, तो उन्होंने नित्य दान किया। अभी ये व्यक्ति जो था वो अंधा था, उसको नेत्र मिल गया और उसने फिर नेत्रों के द्वारा बहुत गलत गलत कार्य किए, बहुत चीजें गलत चीजें देखना शुरू किया। उसने कहा अरे मैंने इतने दिनों तो कुछ नहीं देखा, अब मैं सब देखूंगा, और ऐसा करके उन नेत्रों का उपयोग उसने गलत कार्यों में किया। तो क्या हुआ, ये जो पहला व्यक्ति जो नेत्र दान करके गया उसको पाप लगा, क्योंकि उसके मल उसके जो चित्त है वो अभी पवित्र नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है। चित्त शुद्ध नहीं होने से क्या होगा, वो गलत कार्य में इंगेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें दूसरों के चित्त में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको हटाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति को हरे कृष्णा महामंत्र देना होगा, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस चेतो दर्पण मार्जनम, उसका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो जब इस प्रकार भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम लेता है तो मैं उसके चित्त से सारी कमियों को हटा देता हूं, उसको शुद्ध कर देता हूं। और भगवान किसी का शोषण नहीं करते, इसीलिए भगवान भोगता है। आप देखेंगे जब महाभारत युद्ध के पहले जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो राजसूय यज्ञ में भगवान ने क्या किया, भगवान भले ही प्रथम पूज्य बनाए गए थे लेकिन भगवान ने सारे गेस्ट जो भी आते थे उनके पैर धुलते थे। तो वो अर्जुन के मित्र हैं और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो भगवान में भी सेवा करने की भावना, ऐसा नहीं कि भगवान शोषण करना चाहते हैं, ये मेरे अंडर में है चलो इसको मैं शोषण कर दूं, नहीं शोषण नहीं करना चाहते, वो सेवा भावना रखते हैं, स्वामी भावना उनके पास नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं कि मैं सारे लोगों का स्वामी हूं। अभी देखिए भगवान ने किसी को भी मान लीजिए जैसे रावण को उन्होंने हराया, तो रावण को हरा के रावण की लंका पे खुद राज्य नहीं किया, उन्होंने क्या कि विभीषण को राजा बना दिया। ऐसे बाली को हराया तो सुग्रीव को राजा बना दिया, कंस को हराया उनके पिताजी को राजा बना दिया। ऐसे हर जगह वो सेवा की भावना ही रखना चाहते हैं, स्वामित्व तो नहीं रखना चाहते। वो अनासक्त हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे छोटे से घर में जिसमें छोटी सी जमीन के लिए दो भाई आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं रहती है, वो प्योर हैं और वो दूसरे जीवों को भी शुद्ध करते हैं जब कोई उनका नाम लेता है। तो इस संसार में जीव कैसे हैं, वो दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, उनको अपने अंडर में रख के उनको भोगना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु वो क्या करता है, सारे संसार पर राज्य करना चाहता है, सारा धन जहां भी मिल जाए वो अपने पास लाना चाहता है। वो क्या होता है, पर दुख सुखी होता है, जब दूसरे जीव सुखी होते हैं तब उसको दुख होता है और जब वो दुखी होते हैं तब उसको बहुत सुख होता है। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके उल्टा होते हैं, वो पर दुख दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उस व्यक्ति के हृदय में जो काम क्रोध लोभ भरा हुआ है सबसे पहले हमें उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए, फिर उसका भला करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम खुद ही फंस जाएंगे। तो जैसे रावण था, काम से वो पराजित था, वो माता सीता को हरण करके ले आया। दुर्वासा जी क्रोध से पराजित हो गए, वो अम्बरीश महाराज को श्राप दे दिए, जबकि अम्बरीश महाराज एक साल की एकादशी का पालन किए हुए थे और उसके बाद वो एकादशी करने के बाद वो पारण करना चाह रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं स्नान करके आता हूँ फिर साथ में पारण करेंगे, बोले ठीक है। और इस तरीके से दुर्वासा जी चले गए और बहुत समय निकल गया, पारण का समय निकल रहा था। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया, तुलसी दल को ग्रहण कर लिया और दुर्वासा ऋषि को पता चल गया, उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया क्रोध के वशीभूतों के, कोई बड़ी बात नहीं थी, पानी तो पिया था क्या हो गया, लेकिन उन्होंने उनको बहुत क्रोध आ गया, इसने मेरे से पहले कैसे पानी पी लिया। और ऐसा करके उन्होंने एक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। तो अम्बरीश महाराज के सेवा में भगवान का सुदर्शन चक्र लगा रहता था। उस सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले तो उस राक्षसी को मारा और फिर दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। दौड़ा दौड़ा के हर लोक में घूमे, हर देवता के पास गए, किसी देवता ने उनको शरण नहीं दी। यहां तक कि अंत में वो भगवान के धाम पहुंच गए वैकुंठ। वहां भी भगवान से जब उन्होंने बोला तो भगवान ने कहा, देखो अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूं, अगर तुम अगर तुम्हें इससे मुक्ति चाहिए ही तो तुम जाओ अम्बरीश महाराज की शरण दो। और दुर्वासा ऋषि भाग के अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और अम्बरीश महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप ताप देना बंद कर दीजिए इनको। और अम्बरीश महाराज जो है इस प्रकार सुदर्शन जो है वो ताप देना बंद कर देते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्रोध और तीसरा लोभ। लोभ लोगों को इतना होता है जैसे दुर्योधन को लोभ था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप पूरा राज्य करो, केवल हमको 5 गांव दे दो राज्य करने के लिए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राज्य ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। वो भिक्षा नहीं मांग सकता, वो दुकान नहीं खोल सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता। आप जो है हमें 5 गांव दे दो, हम उसी में राज्य करेंगे बस। लेकिन दुर्योधन कह रहा है, नहीं, हम 5 गांव क्यों दे दें, हम पूरा राज्य करेंगे, 5 गांव भी नहीं देंगे। 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो इस तरीके से काम क्रोध लोभ जो है हमारे अंदर भरा हुआ है। कभी भी आपको काम क्रोध लोभ के बारे में याद करना हो तो 3 पर्सनालिटीज को याद कर लेना चाहिए। काम यानी कि रावण, क्रोध यानी कि दुर्वासा, और लोभ यानी कि दुर्योधन। तो इस तरीके से ये 3 चीजें जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त करता है। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय का सार था। तो इस प्रकार हमने शुरू से जाना कि कर्म कांडी जो व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं किसी कारणवश कि उनको कुछ फायदा हो जाए, कुछ लाभ मिल जाए, फिर धीरे धीरे वो कर्म योगी बन जाता है। वो जान जाता है कि कृष्ण जो है वो सारे देवताओं से ऊपर हैं, फिर भी उसकी कुछ इच्छा भगवान कृष्ण से रहती है, वो कुछ भगवान से एक्सपेक्ट करता है। तो फिर उसके बाद निष्काम कर्मयोगी होता है। निष्काम कर्मयोगी मतलब उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, वो अपने फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। वो कहता है कि मैं जीव हूं, इस संसार में रह रहा हूं, इस शरीर में रह रहा हूं, और मेरा जो चित्त है वो अशुद्ध है, अभी मुझे अपने चित्त को जो है वो शुद्ध करना है। इस तरीके से वो करता है। इस तरीके से करते करते जब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये जो निष्काम कर्मयोगी होता है ये क्या करता है, ये एक और ज्ञान को प्राप्त करता है। वो ज्ञान ये है कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो जीव के सबसे पड़ोस में है। और वो देखता है कि ये दुनिया जो है इतना इसमें परेशानियां भरी हुई हैं, काम क्रोध लोभ भरा हुआ है। अभी 1 साल हो गया शायद, सुशांत सिंह राजपूत करके एक फिल्म एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते इस संसार में रहते हुए कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को भी रेडी हो जाते हैं। तो ये बहुत विषम परिस्थिति लोगों के सामने होती है। तो ये जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, निष्काम कर्मयोगी ये वो सोचते हैं कि ये जो मैं फल भगवान को अर्पित कर रहा हूं ये कहां जा रहा है, इसको मैं जानना चाहता हूं, उनको कैसे प्राप्त करूं, कैसे उनकी शरण ग्रहण करूं। तो उन्हें पता चलता है कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता है और वो सोचता है कि मैं अष्टांग योग कर लूंगा तो उसे ऐसे इस तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि क्या होना चाहिए, उसको अनाश्रित होना चाहिए, किसी और पे आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी क्रिया पे आश्रित नहीं होना चाहिए। अनासक्त होकर अपने कर्म फलों को जो भगवान को प्रदान करता है उसको सन्यासी कहा जाता है। भगवान अर्जुन को बोलता है, वो व्यक्ति सन्यासी है। जिसे यहां साक्षात्कार हो जाता है कि वह अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है, यानी भगवान सैंक्शन करने वाले हैं और जीवात्मा केवल इच्छा कर सकती है और प्रकृति जो है वो करती है, वो जान जाता है कि भगवान की अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो निष्काम कर्म योग द्वारा अपनी दृष्टि और कार्य शुद्ध करता है वो अष्टांग योग कर सकता है। ध्यान से पढ़िए, जो निष्काम कर्म योग द्वारा अपनी दृष्टि और कार्य शुद्ध करता है, हाँ, और तीन चीजें समझते हुए, क्या तीन चीजें समझते हुए, भगवान सर्वोच्च भोक्ता है, भगवान सर्वोच्च नियंत्रक हैं और भगवान सबसे प्रिय मित्र हैं, ये जानते हुए जो करता है वो क्या है, वो प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर सकता है भगवान की। तो जब किसी व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है तब वो ध्यान योग की ओर बढ़ सकता है। चित्त शुद्ध यानी उसकी दृष्टि और कार्य शुद्ध हो जाते हैं। अब ये ध्यान योग क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में ही इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पर हाँ, बोलते हैं कि जिसे अष्टांग योग का अभ्यास करना है उसे अपने कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए तुरंत। तो भगवान पहले ही श्लोक में बोलते हैं, अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा संन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। बोलते हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है। कौन है सन्यासी? जो अपने कर्म फलों को उनके प्रति अनासक्त है, परेशान नहीं होता उनसे और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, उसको बोला जाता है। एक मिनट, बल्कि असली सन्यासी वो है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और कर्तव्यों का पालन करता रहता है। यानी कर्म योगी कर्म करने पर भी अगर कर्म फल का त्याग करता है तो उसको सन्यासी कहा जाता है, और अगर उसका मन इंद्रिय भोग पर चिंतन नहीं करता है तो उसको योगी कहा जाता है। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग समझो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो योगी तभी कोई बन सकता है जब उसके अंदर से सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे हृदय में बहुत सारे काम क्रोध लोभ तो रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, मुझे वो चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, हाँ इसको ले लो उसको ले लो, इस तरीके से हर चीज को अपने पास इकट्ठा करने का प्रयास करता रहता है। काम वासना होती है, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ऐसे क्रोध होता है, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति का केवल चित्त शुद्ध हो जाता है उसके लिए संसार में करने लायक कुछ भी नहीं रह जाता। तो अगर कोई सन्यासी जंगल में जाता है, अगर उसका चित्त शुद्ध नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है पर उसका चित्त शुद्ध नहीं है तो उसके लिए बहुत कठिन होता है अष्टांग योग करना, ध्यान योग करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, एक गृहस्थ हो, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सन्यास की भावना को रखते हुए, विरक्त रहते हुए, सन्यास की भावना को रखो, विरक्त रहो और भगवान को अपना ध्येय बनाओ, तो तुम क्या हो जाओगे, सन्यासी के समान ही हो जाओगे। सन्यासी मतलब सब कुछ त्यागना। तो भगवान कहते हैं तुम्हें सन्यासी बनने के लिए कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या करो, अपनी ड्यूटीज को पालन करो, सन्यासी की भावना रखो, विरक्त रहो और भगवान को अपना लक्ष्य बनाने के प्रयास करो। तो विरक्ति के साथ किया गया कर्म भी सन्यास माना जाता है। तो पहले दो श्लोकों में भगवान ने निष्काम कर्मयोग को बारे में बताया, अभी यहां दो स्तरों के बारे में बता रहे हैं भगवान। अष्टांग योग, पहले थोड़ा सा अष्टांग के बारे में सुन लीजिए, क्या है अष्टांग योग। अष्टांग योग में एक जीव को वो जंगल जाता है और जंगल जाके ध्यान करने का प्रयास करता है, अष्ट अंग बोले जाते हैं। अष्ट अंग का अर्थ है आठ अंग। आठ अंग क्या है? सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी आप समझ लीजिए बस इतना। तो अष्टांग योग जो है उसके दो स्तर होते हैं, एक होता है योगारुरुक्षु। योगारुरुक्षु मतलब सबसे भी उसकी शुरुआत है योग करने का, और दूसरा होता है योगारूढ़। योगारूढ़ का अर्थ है कि योग में अभी भक्त वो जो व्यक्ति है वो स्थित हो गया, स्थिर हो गया है। तो अभी तीसरे चौथे नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं योगारुरुक्षु के बारे में। कहते हैं निष्काम कर्म योग करते हुए व्यक्ति को अनासक्ति और अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, इससे धीरे धीरे उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाएगा। अब ये देखिए आठ अंग। सबसे पहला अंग क्या है? यम नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये आठ अंग हैं, फिर से दिखाता हूं एक बार। सबसे पहले यम। यम में कुछ चीजें निषेध होते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। फिर नियम, क्या करना है वो बताया जाता है। फिर आसन होते हैं, कुछ व्यायाम होते हैं शारीरिक। फिर प्राणायाम होता है, श्वसन क्रिया और व्यायाम इत्यादि। फिर प्रत्याहार, इंद्रिय वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। और धारणा, भगवान के स्वरूप पर मन को केंद्रित करना। फिर ध्यान, परमात्मा पर और तीव्रता से ध्यान लगाना। और समाधि मतलब उस परमात्मा पर पूर्णतः ध्यान आपका लग गया, उसको समाधि बोलते हैं। तो यह जो अष्टांग योग के आठ अंग है, पतंजलि जी के द्वारा दिए हुए हैं, योग सूत्र में आते हैं। अब जरा हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। जैसे यम, यम में सामाजिक शिष्टाचार आता है, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, सच्चा आचरण करना है, चोरी नहीं करना है, अविवाहित रहना है, अपरिग्रह रहना है, मम और मैं और मेरा की भावना को त्यागना है, इसको बोलते हैं यम। फिर दूसरा है नियम, सोच यानी कि स्वच्छ रहना है, संतुष्ट रहना है, तपस्या करना है, अभ्यास करना है और भगवान को शरणागत होना है। यम मतलब जो करना है और नियम मतलब ठीक है, यम मतलब सामाजिक शिष्टाचार और नियम मतलब अपने ऊपर क्या लागू करना है। तो अपने ऊपर लागू करना में स्वच्छता, समाधान, संतुष्टि, तपस्या, अभ्यास, इन सब चीजों को बताया गया है। तो अभी अष्टांग योग में आगे कैसे बढ़ेंगे, मैंने बताया दो होते हैं कि योग रुरुक्षु और एक दूसरा है योग रूढ़। योगा रूढ़ के प्रगत स्तर पर पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण और इंद्रिय वस्तुओं से अनासक्ति की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण मन पर नियंत्रण का महत्व बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति योगा रुरुक्षु यानी कि शुरुआत की अवस्था से लेके योगा रूढ़ तक पहुंचना चाहता है, यानी जिसमें परिपक्व हो जाएगा वो योग में, उस तक पहुंचना चाहता है, तो उसमें मन पे नियंत्रण का जो है बहुत महत्व है। अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो संभव नहीं है। तो योगारूढ़ अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने मन पे और इंद्रियों पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से भगवान अभी मन के बारे में बताते हैं। पांचवें श्लोक में उद्धेरादात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधुर आत्मयो रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मयात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बोलते हैं कि मन जो है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, लेकिन जो इसको जीत नहीं पाया है उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो लोग अष्टांग योग और भक्ति योग को ज्वाइन करते हैं वो धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है, हम अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तो मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो, लेकिन फिर भी बुद्धि के द्वारा वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो मन जो है वो मित्र भी है, शत्रु भी है। जैसे कोई दरवाजे की चाबी होती है, तो दरवाजे की चाबी दरवाजे को खोलती भी है और दरवाजे को बंद भी करती है। वैसे ही मन भी क्या है, मित्र की तरह भी कार्य करता है और शत्रु की भी तरह कार्य करता है। तो अपने मन का यूज करके, उपयोग करके अपने आप को उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने मन को छोड़ दिया, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, तो क्या करेगा मन आपको, मन आपको अधोगति की ओर लेके जाएगा, नीचे की ओर लेके चला जाएगा। ये बहुत पावरफुल है, इसको बहुत कठिन है कंट्रोल करना मन को। एक बार एक आदमी था, वो एक साधु के पास गया। साधु से बोला, साधु साहब मेरा बहुत काम है, और बहुत सारे वरदान मुझे आपसे चाहिए। तो साधु ने उनको वापस भेज दिया। वो कुछ दिनों बाद फिर से गया, तीन चार बार गया। तो साधु ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक जिन्न देता हूं, उस जिन्न को लेके जाओ, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा तुम्हारी वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से जिन्न को लेके आए। उन्होंने जिन्न से कहा देखो मेरा 1000 एकड़ खेत है, उसको जरा उसको जुताई कर दो। तो जिन ने कहा ठीक है। अभी इन्होंने सोचा 1000 एकड़ करने में तो उसको 15-20 दिन तो जाएगा ही। और जिन जो है 2 घंटे में वापस आ गया, बोला हो गया, और बताओ और काम क्या है। तो उसने कहा अरे तो बहुत जल्दी आ गया, ठीक है मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाओ। तो उसने 1 घंटे में घर बना दिया बहुत सुंदर सा, वापस आ गया, फिर से बताओ मुझे क्या करना है। अब तो ये परेशान हो गया, ये भागा वहां से और भाग भाग के उसी साधु के पास वापस पहुंचा। और साधु से कहा साधु ये तो जिन तो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बताइए क्या करूं मैं। तो साधु ने कहा एक सीढ़ी ले आओ और सीढ़ी को खड़ा कर दो एक दीवार के सहारे, और इस जिन को बोल दो अभी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और जब तक मैं बुलाऊ ना तब तक चढ़ते उतरते रहो। जब कुछ काम होता था तो बुला लेता था, काम करवा लेता था, फिर बोलो जाओ सीढ़ी पे चढ़ो उतरो। तो इस तरीके से ये मन भी वैसा ही है। मन कैसा है? अनियंत्रित रहता है। अगर इसको सीढ़ी दे दो, सीढ़ी क्या है? महामंत्र सीढ़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सीढ़ी अगर इसको दे दोगे तो ये जो है शांत रहेगा, नहीं तो ये क्या करेगा आपको परेशान करता रहेगा अनियंत्रित होने के कारण। ये क्या कर सकता है चलिए देखते हैं। ये मनीषा जी कौन है, रिप्रेजेंट करने लगी हो तो ये अनियंत्रित मन जो है वो क्या कर सकता है देखते हैं। अनियंत्रित मन यह आपके लिए क्या कर सकता है? आत्मविश्वास की कमी ला सकता है यह मन। आप कुछ करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास को कम कर देगा, भरोसा नहीं रहेगा, पागलपन ले आएगा, कई तरीके की बीमारी जो है मन के कारण होती है, निराशा आएगी जीवन में, तनाव लेके आएगा, हाई ब्लड प्रेशर लाएगा, अपने परिवार और समाज के लिए भी हानिकारक है, और दृढ़ निश्चय की कमी है। अनियंत्रित मन है अगर तो अनियंत्रित मन से किए गए कार्यों का परिणाम क्या होता है? हत्या, बलात्कार, शराब, टीवी तोड़ देना, झगड़ा करना, आत्महत्या कर लेना, वैश्याएं, घर जलाना, सिगरेट इत्यादि, सिगरेट पीना इत्यादि, दारू पीना इत्यादि, सब कुछ अनियंत्रित मन से किए गए कार्यों का परिणाम होता है। बहुत कठिन है इससे डील करना। ये इवन हमारे समाज को, हमें, हमारे राज्य को, हमारे देश को, सबको परेशान कर सकता है। तो क्या करना चाहिए हमको? देखिए ये इस फिगर देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की संरचना क्या है? 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो सब कुछ मन में स्टोर होता चला जाता है। आंख कुछ देखती है मन में स्टोर, कान कुछ सुनता है मन में स्टोर, नाक कुछ सूंघती है मन में स्टोर, जिह्वा कुछ टेस्ट करती है मन में स्टोर, त्वचा कुछ स्पर्श करती है मन में स्टोर, और साथ साथ में हमारे अंदर अपूर्ण इच्छाएं बहुत सारी इसमें रह जाती हैं। बहुत सारी अपूर्ण इच्छाएं रहती हैं जिनको हम पूर्ण नहीं कर पाए, और साथ साथ में पिछले सारे चीजों का अनुभव भी इसके अंदर रहता है। और जो बुद्धि है वो निर्णय लेने वाली है, मन और इंद्रियां। अभी एक और फिगर आएगा, हाँ ये आ गया, ये देखिए एक फिगर, इसमें 5 घोड़े हैं, सॉरी 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े कौन है? ये 5 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, हाँ, और इस घोड़ों से एक लगाम गई हुई, रस्सी गई हुई है, देखिए वो रस्सी कौन है? वो मन है। और मन को जो पकड़े हुआ है एक आदमी जो दिख रहा होगा ब्लैक कपड़े पहना हुआ, ये है बुद्धि। और जो इस रथ की सवारी कर रहा है वो है आत्मा, और ये जो रथ है वो है हमारा शरीर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को पिक्चर? हाँ ओके। तो ये जो आप भगवद गीता में भी देख सकते हैं, ये शुरू के जो फोटोज हैं उसमें आया हुआ है, देख सकते हैं वहां पे भी। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये रथ जो है, ये रथ है हमारा शरीर, और ये जो पांच घोड़े हैं ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से यानी कि घोड़ों से जो लगाम गई हुई है, जो रस्सी गई हुई है, वो रस्सी है हमारा मन, और ये जो आदमी उस रस्सियों को पकड़े हुए है वो है हमारी बुद्धि, और जो इस रथ की सवारी कर रहा है वो है आत्मा। क्लियर है? अब देखिए, बुद्धि के हाथ में मन की मन है, यानी लगाम जो है उस व्यक्ति के हाथ में है। अगर मन को बुद्धि ने खुला छोड़ दिया, मन को लूज छोड़ दिया बुद्धि ने, तो क्या होगा? पांच घोड़े पांच अलग अलग रास्तों पे जाएंगे, पांच तरफ भागेंगे, और उससे क्या होगा, ये जो रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति सवारी कर रहा है इसको कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट होगा। और अगर बुद्धि मन को टाइट पकड़े हुए है, यानी कि बुद्धि जो है वो ट्रेंड है, तो मन को पकड़ के रखती है, तो ये घोड़े जो है सही दिशा में चलते रहेंगे। आपको पता ही होगा कि घोड़ों को कंट्रोल कहां से किया जाता है, मुख से कंट्रोल किया जाता है। तो ये रस्सी जो है घोड़ों के मुख से निकली हुई इस व्यक्ति के पास, इस बुद्धि के पास रहती है, तो बुद्धि जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। किसी को इस जो पिक्चर है उसमें किसी को कुछ पूछना है? ये बुद्धि है, बुद्धि इंटेलिजेंस। हमने जो भी जीवन भर में जो भी हमने सीखा समझा है उससे हम एक बुद्धि डेवलप करते हैं, इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। हाँ, वो बताता है सही क्या है, गलत क्या है, हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को डायबिटीज है और वो मिठाई की दुकान के सामने से निकल रहा है, तो मिठाई की दुकान पर मिठाई देखते ही उसकी आंखें जो है मिठाई को देखती हैं, और वो आंखें जो है मन के पास भेजती हैं अब संदेश कि देखो वो मिठाई है बहुत टेस्टी है, मजा आ जाता है खाके, उसका टेस्ट मन याद करता है। हाँ 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 सही कह रहे हो। तो मन जो है वो अभी वो बुद्धि के पास जाता है, हाँ बुद्धि डिसीजन देने वाली कि खाना है कि नहीं खाना है, कौन बताने वाला है, बुद्धि। तो अगर बुद्धि कमजोर है यानी कि मन को सही से नहीं पकड़े हुए है, तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि जान रही है कि डायबिटीज है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मन जो है वो बहुत पावरफुल है। तो बुद्धि अगर पावरफुल है तो मन को नहीं खाना है क्योंकि तुम्हें डायबिटीज है करके वो मन को रोक सकती है, और अगर वो नहीं रोक पाई मन को तो क्या होगा, ये व्यक्ति डायबिटीज होते हुए भी वो स्वीट को खा लेगा और अपनी अधिगति करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से बुद्धि जो है वो मन के ऊपर है। जैसे बुद्धि मतलब समझो पति है और मन जो है वो पत्नी है, इंद्रियां उसके बच्चे हैं, ऐसा समझिए। तो बुद्धि जैसा बोलती है मन अगर वैसा करेगा, बुद्धि के अंडर में मन रहेगा तो सही चलेगा, और अगर मन जो है बुद्धि को कंट्रोल करने लगेगा तो समस्या हो जाएगी। तो एक जो आइडियल हस्बैंड होता है, आइडियल पत्नी होती है, तो उस तरीके से अगर रहेंगे तो मन कंट्रोल में रहेगा और ये जो इंद्रियां हैं वो सही रूप से चलती रहेंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें बुद्धि को स्मार्टर बनाना होगा, स्मार्ट बनाना होगा बुद्धि को। बुद्धि स्मार्ट कैसे बनेगी? हम जब भगवद गीता को पढ़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैं एक अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का आया था हमसे मिलने के लिए, तो मैं ऐसे उससे बात कर रहा था, तो मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछा। मैंने कहा तुम्हें पता है मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, दिमाग क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, हृदय क्या होता है, आत्मा क्या होता है? तो उसने बहुत सोचा और बोला है सारे एक ही चीज के नाम है। उसके अनुसार मन जो है, बुद्धि जो है, मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, सब एक ही कुछ सब कुछ है। ऐसे हम लोग भी सोचते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना मेरा मन कह रहा है मैं ये करूं, अरे मन तो नरक में लेके चला जाएगा, अगर मन का करेंगे तो नरक चले जाओगे। तो मन बुद्धि ये सब अलग अलग, विवेक ये सब अलग अलग के नाम है, ये हमें भगवद गीता से समझने का प्रयास करना चाहिए कौन है ये। तो अगर भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे और ये रथ वाला जो फिगर है इसको हम समझ पाएंगे और इसके अनुसार बुद्धि को मजबूत करके मन को कंट्रोल में कर पाएंगे, जिससे कि इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी और रथ जो है वो सुगमता पूर्वक जाएगा और आत्मा को परेशानी नहीं होगी। ये शरीर है, रथ इज बॉडी ओनली, ये हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा सवारी कर रहा है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं। चलिए, भगवान योगारूढ़ अवस्था में योगी के लक्षण बताते हैं। योगारूढ़ मतलब अभी वो योग को वो योग में स्टेबल हो गया है, स्थित हो गया है। भगवान उसका लक्षण बताते हैं 7 नंबर श्लोक में। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः स्वहेन मित्रायुदासीन मध्यस्थाद्वयस्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जितात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने मन को जीत लिया है उसने समझो कि भगवान को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। प्रशान्तस्य, और वो शीतोष्ण यानी गर्मी सर्दी सुख दुख और मान और अपमान में वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। उसके लिए दोनों एक जैसे हैं, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मान मिल रहा हो चाहे अपमान मिल रहा हो। शिल प्रभुपाद, उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान, भगवान का महामंत्र, ये ज्ञान विदेशी लोगों को भी दिया, उनके लिए सब एक समान है। वो विदेशी लोग जो कि गाय का मांस तक खाते थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने भगवान का भक्त बना दिया। फिर भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। जो योगारूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है वो क्या होता है, वो अपने अर्जित ज्ञान से और अनुभूति से संतुष्ट रहता है, जितेंद्रिय कहलाता है, और सभी वस्तुओं को एक नजर से देखता है। समलोष्टास्म कांचना, चाहे कंकड़ हो चाहे पत्थर हो या सोना ही क्यों ना हो, कांचना यानी सोना, वो एक नजर से सबको देखता है। फिर बोलते हैं सुहेन मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। वो जब मनुष्य निष्कपट हितैषी, प्रिय मित्र, न्यूट्रल रहने वाले, मध्यस्थ लोग, ईर्ष्यालु लोग, शत्रु, मित्र, पुण्यात्मा, पापी, सबको समान भाव से देखता है तो वो और उन्नत माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं अष्टांग योग के स्तर। अभी भगवान दो, यहां पे दो विभाग हैं, एक भगवद गीता के 6वें अध्याय में 10वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक, जिसमें भगवान ध्यान की मूल अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, और दूसरा विभाग में ध्यान में पूर्णता के बारे में बताते हैं, जो 18वें श्लोक से लेकर 32 नंबर श्लोक तक है। तो चलिए अभी हम लोग अष्टांग योग के बारे में, जो कि 10 नंबर श्लोक से लेकर 36 नंबर श्लोक तक है, जानने का प्रयास करते हैं। ये अभ्यास अवस्था है, क्या करना चाहिए उस योगी को। हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, इस प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल यहां पर दे रहा था कि प्रभुपाद जी उस फ्रिज में ही भोग रखते थे जब विदेश गए थे फर्स्ट टाइम, तो जिस घर में रुके थे वो भारतीय थे, मथुरा के रहने वाले थे, लेकिन वो लोग मांस खाते थे, तो एक ही फ्रिज था। प्रभुपाद जी को 1 महीने उनके घर में रुकना पड़ा, तो भगवान को भोग लगाते थे प्रभुपाद, तो भगवान को भोग लगाने के लिए जो भोग था वो उसी फ्रिज में रखते थे जिस फ्रिज में मांस रखा हुआ रहता था। सोचिए, और बाद में जब प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्यों को बना लिया और बड़े बड़े मंदिर बन गए, तो प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी कारें आती थी, प्रभुपाद जी उसमें बैठते थे, तो प्रभुपाद जी को यही लगता था कि वो बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके लिए बैलगाड़ी और वो बड़ी कार वो सेम थी। तो ये सबको एक दृष्टि से देखने वाले व्यक्तियों का ऐसा बताया जाता है। चलिए, योगारूढ़ स्तर में अभ्यास कैसे किया जाता है, भगवान 10वें नंबर श्लोक से बताते हैं। योगी युंजेत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे, उसे आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये जो योग है ये कहां पे होगा, ये जंगल में होता है, ये ऐसे कहीं पे भी आप नहीं कर सकते, बड़े बड़े शहरों में बैठ के नहीं कर सकते। अभी कई सारे शहरों में ध्यान केंद्र खुलते हैं, वहां पे योग हो ही नहीं सकता वास्तव में। इसलिए एकाकीयत चित्तात्मा एकांत स्थान में जाके करना चाहिए। 11-12 नंबर श्लोक में बताते हैं कि कैसे बैठना चाहिए योगाभ्यास के लिए। योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछाना चाहिए, फिर उसे मृगछाला से ढकना चाहिए। मृगछाला इसलिए यूज की जाती है कि कीड़े मकोड़े ना आए। उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा देना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। योगी को चाहिए इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए, मन इंद्रियों और कर्म को वश में करे और मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ओके, 13-14 ध्यान कैसे करना है बताते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्षन् नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। उसे क्या करना चाहिए, उसे आंख ना तो पूर्ण रूप से बंद करनी चाहिए ना पूर्ण रूप से खोलनी चाहिए। अगर मान लो बंद कर लेंगे तो नींद आ जाएगी, और खुली रखेंगे तो इधर उधर की चीजें देखेंगे। इसलिए आंख को क्या करना चाहिए, आधी खुली और आधी बंद रखते हुए नाक के अग्र नासिकाग्रम नासिका के अग्र भाग को देखना चाहिए, जो टिप ऑफ द नोज है उसको देखना चाहिए। अपने शरीर गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए उसको। अविचलित भाव से, दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर हृदय में भगवान के चिंतन करना चाहिए। अपना चरम लक्ष्य भगवान को बना लेना चाहिए। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृते स्थित मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर मच्चित्तो। अपना चित्त जो है वो मुझ में लगा देना चाहिए। अभी अष्टांग योग की क्रियाएं क्या है 16-17 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। भगवान बोलते हैं नात्यसनस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जो न तो अधिक खाता है न बहुत कम खाता है, जो न तो अधिक सोता है जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की संभावना नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा गलत पड़ गया। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, वो योगी नहीं बन सकता। यानी इनको पूर्ण रूप से नियमित करना होता है उसको। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। योगो भवति दुःखः, कष्टों को नष्ट करने वाला होता है। तो ये अष्टांग योग की क्रियाएं हैं। अभी उसमें पूर्णता कैसे प्राप्त की जाती है तो बोलते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर हो जाता है। और दूसरा श्लोक बताया जाता है यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह हवा न होने पर दीपक जिस तरीके से अविचलित जलता रहता है, वैसे ही योगी जिसका मन वश में हो जाता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अभी समाधि अवस्था कैसे मिलती है वो बताया जाता है कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद प्राप्त कर सकता है। उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख को प्राप्त करता है और वो कभी सत्य से विपथ नहीं होता। सुख की प्राप्त होने पर वो कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य कड़ी से कड़ी कठिनाइयों से भी विचलित नहीं होता। वो भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई होता है तो उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अभी 24-25 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की पद्धति क्या है। सानिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा संकल्प प्रभुवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो बोलते हैं कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए। हाँ, और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। भले ही स्लो चल रहा हो लेकिन पथ को छोड़ना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग दे और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में रखे। शनै शनै रूपम शनै शनै रूप अरमेत बुद्धिया धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। बोलते धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, मन को आत्मा में स्थित कर लेना चाहिए और कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और उसके बाद भगवान 26 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कोई पूछ सकता है कि अगर मन इधर उधर भटकता रहता है, जैसे हम लोग जप करते हैं तो मन इधर उधर जाता रहता है, तो क्या करना चाहिए? भगवान आंसर देते हैं, देखिए जैसे माता जी हैं बच्चों को खींच के लेके आ रही है अंदर, हाँ नहीं खेलना नहीं है, चलो अंदर चलो अभी, वैसे ही यतो यतो निश्चलति मनम अश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मन्नेव वशम नयेत। क्या कहना चाहिए? मन जो है अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण कर रहा हो, मनुष्य को चाहिए वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो जैसे हम लोग जप करते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, तो उसको खींच के भगवान के नाम को सुनने में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन चला गया, अरे कल से क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है, अरे बारिश शुरू हो गई, अरे मुझे उसको फोन करना है, ये नोट्स बनाना है, मन को खींच के लाओ, फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से मन को बार बार खींच के लाना चाहिए और अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, भगवान कहते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32 तक श्लोकों में भगवान इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं कि आत्मसंयमी जो है बहुत परम सुख को प्राप्त करता है, हर तरफ मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं। जो मेरी इस तरीके से भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो सदैव मुझ में स्थित रहता है, और वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इतना भगवान ने अर्जुन को बताया। अभी अर्जुन का प्रश्न है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथी बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिवशु दुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन जो है इतना चंचल है, प्रमाथी बलवद्रणम, ये विचलित करने वाला है, क्षुब्ध करने वाला, बहुत बलवान है, दुराग्रही है, हठीला है। तस्याहम निग्रहम, उसको वश में करना है भगवान। मैं तो सोचता हूं कि वायु को वश में किया जा सकता है, वायु को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना जो है वो बहुत कठिन है। तो क्या करना चाहिए? जब अर्जुन बोल रहा है कि उसके लिए कठिन है, तो हम लोगों की स्थिति क्या है? अर्जुन कौन है? जब अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा था क्या दिखाई दे रहा है तुमको, तो अर्जुन बोला था मुझे चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और वही अर्जुन जो द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के लाया था, जब भी ऊपर मछली जो है चक्र की सहायता से घूम रही थी, उसकी आंख पे निशाना मारना था नीचे पानी में उस मछली को देखते हुए, और अर्जुन उस मछली को जीत के ले आया था, उस मछली को उसने मार दिया था और द्रौपदी को जीत के ले आया था, वो अर्जुन क्या बोल रहा है? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथी बलवद्रढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिवशुदुष्करम। मन को कंट्रोल में करना तो वायु को कंट्रोल में करने से भी ज्यादा कठिन है। क्या करूं मैं? आपने जो भी योग पद्धति मुझे बताई है वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन जो है बहुत चंचल है और बहुत अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता है मेरा मन। तो इस प्रकार भगवान मन को कैसे वश में कर सकते हैं वो बताते हैं। श्री भगवान वाच असंसयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर कोई उपयुक्त अभ्यास करता है और विरक्ति करता है तो संभव है। अभ्यास करने से और वैराग्य धारण करने से मन कंट्रोल में आ सकता है। भगवान अगले श्लोक में और बताते हैं, असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्य वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छंकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है, समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए दो चीजें ध्यान रखिए, अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है और वैराग्य, ये दो चीजें करने से मन कंट्रोल में हो सकता है। वैराग्य मतलब इंद्रिय तृप्ति की जो भी इच्छाएं हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करना और अभ्यास करते रहना, भले ही शुरू में हमें हार मिले लेकिन अभ्यास करते रहना, अभ्यास चालू रखना, प्रैक्टिस करते रहना। शुरू में हो सकता है एक सेकंड के लिए मन लगे, हाँ फिर ना लगे, तो बाद में दो सेकंड के लिए लगने लगेगा, फिर दस सेकंड के लिए लगने लगेगा, एक मिनट के लिए, दस मिनट के लिए लगने लगेगा, अभ्यास करते रहने से दो घंटे के लिए लगने लगेगा, 24 घंटे भगवान का ध्यान लग सकता है फिर, हाँ अभ्यास और साथ साथ में वैराग्य। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं वैराग्य नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी, पतन हो जाएगा, अभ्यास को कोई फायदा नहीं। तो अभ्यास भी करना है और वैराग्य भी साथ में रखना है। अर्जुन ने सोचा कि योगाभ्यास से मन तो नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति यानी कि मैं या कोई और, अगर वो योगाभ्यास कर रहा है, शुरू में कर रहा है और उसका मन नियंत्रित तो नहीं हो पाया, तो उसका होता क्या है, वो बेचारा क्या करता है? क्योंकि अभी वो आया, पहले क्या कर रहा था, पहले वो दोस्तों के साथ खेलता कूदता था, हाँ तो उसने दोस्तों को छोड़ दिया और आ गया अभी भक्ति करने के लिए, और भक्ति करना शुरू किया, अभी भक्ति भी नहीं उससे हो रही है, तो ना तो वो इंद्रिय तृप्ति कर पाया और ना इधर भक्ति कर पाया, उसका क्या होगा, अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान उसका आंसर देते हैं, अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच अयति सिद्धि योपेतो योगाचल मानसा अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसकी गति क्या है, जो प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रवि में नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति दोनों सफलताओं आध्यात्मिक और भौतिक से च्युत नहीं हो जाता और बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रह जाता। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बादल आते हैं और बादलों से एक टुकड़ा अलग हो जाता है बादलों से, और वो बेचारा इधर उधर घूमता रहता है, वो बादलों में मिल नहीं पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या वैसे ही उसका किसी लोक में कोई स्थान नहीं रह जाता, ऐसा होता है क्या? अगला, एतन में संशयम कृष्ण क्षेत्र महशिशेषतः तदन्य संशय क्षेत्र न ही उपपद्यते। ये मेरा आपसे संदेह है, मैं इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूं, आपके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सकता है, कृपया मुझे बताइए। और भगवान यहां पर बताते हैं, कहते हैं उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है जो मान लो ऐसा करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया, आत्म साक्षात करना शुरू किया और बाद में पतन हो गया। भगवान दो बार बताते हैं, दो लोगों के बारे में बताते हैं। पहला, जो भक्ति करना ये शुरू किया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का इस लोक में न परलोक में विनाश नहीं होता, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता है। अब बताते हैं 41 नंबर श्लोक में उस योगी के बारे में बताते हैं जो थोड़े समय ही योगाभ्यास किया, बाद में वो चला गया, पतन हो गया उसका, यानी बाद में उसने करना बंद कर दिया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समहा सुचीनाम सीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा योगी जो थोड़े समय तक योगाभ्यास किया और उसका पतन हो गया, क्या होता है उसका? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, वो पुण्यवान घरों में पैदा होता है। सुचीनाम श्रीमताम गेहे, दो तरीके के घर बताते हैं, सुचीनाम यानी पवित्र घर यानी ब्राह्मणों के घर में पैदा होता है, और श्रीमताम यानी वैश्यों के घर में पैदा होता है, या ब्राह्मण या वैश्य उनके घर में पैदा होता है। तो ब्राह्मण घर में पैदा होगा तो क्या होगा, उसको शुरू से ही भगवान की भक्ति के बारे में जानने को मिलेगा और भक्ति को वहीं से शुरू करता है जहां छोड़ा उसने पिछले जन्म में, और वैश्यों के घर पे समस्या नहीं होती पैसे की तो भी भक्ति कर सकता है, ये दोनों चीजें। और ये उस व्यक्ति के बारे में बताया जो कि तुरंत शुरू किया और असफल हो गया। और दूसरा, हाँ, दूसरा जो व्यक्ति लंबे समय के बाद जिसका पतन होता है उसके बारे में बताते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्दे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। जो इस तरीके से असफल हो जाता है, ज्यादा दिनों तक उसने योग किया और अंत में 80% तक योग कर लिया पर 20% रह गया उसका, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, यानी वो आचार्यों के घर पर जन्म लेता है, वैष्णवों के घर पर जन्म लेता है। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज और मैं दोनों ही ऐसे घरों में जन्म लिए जहां पे हमें शुरू से ही भक्ति करने का मौका मिला। तो जो लापरवाह लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो यहां पे मानवता दो तरीके की है, अनियमित और नियमित। अनियमित में सभ्य शिक्षित और दुर्बल लोग होते हैं, और अनियमित में सभ्य शिक्षित और बलवान भी पाए जाते हैं। नियमित में भौतिक भोगों के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले, मुक्ति के लिए कार्यरत लोग और कृष्ण भावना भरित भक्त होते हैं। तो बोलते मनुष्य जन्म में हमें योग्य अयोग्य में भेद करने की और जिम्मेदार जीवन जीने की बुद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हम निम्न योनियों में जन्म लेंगे। कुछ भी खाएंगे तो क्या बनेंगे, सुअर बनेंगे। ऐसे अनैतिक संबंध रखेंगे तो कुत्ते का जन्म प्राप्त होगा। अगर हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जिम्मेदार जीवन बनते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, ज्ञान को विकसित करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, तो क्या होगा, इस भव सागर से हम पार हो सकते हैं। तो भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा है। एक भजन है, भजहु रेमन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखीजन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिनाशरे। इस तरीके से भक्ति करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, उनका दास बनना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका सख्य मित्र बनना चाहिए, उनको अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो धीरे धीरे इस प्रकार से हम भगवान के धाम की ओर बढ़ते हैं। तो ये असफल योगी के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। हाँ, ये आता है भरत महाराज का एग्जाम्पल। तो बोलते हैं कि जो लोग लापरवाह होते हैं वो दुर्घटना का शिकार होते हैं, हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए और माया से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए भगवान विशेष सुविधा देते हैं। अगर कोई भक्त इस प्रकार से भक्ति करता हुआ भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और उसने शरीर त्याग दिया, तो भगवान की कृपा से भले ही उसको अमानवीय शरीर मिले, फिर भी वो भक्ति में आगे बढ़ता है, चाहे वो अपने पिछले जीवन को याद करके हो या प्राकृतिक कारण से। क्या हुआ, एक राजा हुए भरत महाराज, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर राज्य किया और उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, अपने बच्चों को राज्य का कार्यभार दे दिया और जंगल जाके भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो बैठे थे एक नदी के पास में और भगवान का नाम जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो कि गर्भिणी थी वो वहां पे पानी पीने के लिए आई, और उसी समय एक शेर की आवाज आई बहुत तेज से, गर्जना हुई शेर की। तो हिरण वगैरह जो बेचारे होते हैं वो शेर से डरते हैं, तो उस डर के मारे वो हिरणी जो थी उसका प्रसव हो गया और बच्चा जो है वो नदी में गिर गया। जस्ट जन्मा हुआ बच्चा नदी में गिर गया और वो हिरणी जो थी वो डर गई थी तो वो भागी, लेकिन वो भागते भागते उसने अपना शरीर छोड़ दिया, वो मर गई। अभी ये भरत महाराज उस बच्चे को देखे कि ये तो पानी में गिर गया, इन्होंने उस बच्चे को पानी से निकाल लिया। पानी से निकालने के बाद ये उसको अपने घर ले आए, अपने घर मतलब जो उन्होंने कुटी बनाई थी वहां ले आए, और कुटी में रहते हुए उसकी देखभाल करने लगे, देखभाल करने लगे। धीरे 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 क्या हुआ, वो भगवान की भक्ति छोड़कर इस हिरण की भक्ति करने लगे। हमेशा इसके बारे में सोचते रहते, कहाँ गया होगा, कहाँ है, दिख नहीं रहा, कितना सुंदर है, क्या उसने आज कुछ खाया कि नहीं खाया, कहीं किसी शेर ने उसको खा तो नहीं लिया, ऐसा करके 24 आवर्स उस हिरण के बारे में सोचने लगे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय भी वो हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। और भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं कि अंतिम समय में जो जिस भाव का स्मरण करता है अगला शरीर उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता है। अभी अगले शरीर में उनको क्या मिला, हिरण का जीवन मिला। अब देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं। तो हिरण के जीवन को मिलते हुए भी उनको पूर्व जन्म की सारी यादें थी और उनको पश्चाताप भी था कि देखो मेरे को कितना अच्छा जन्म मिला हुआ था, कितनी अच्छे से मैं भक्ति कर रहा था, पर हिरण के चक्कर में मैं फंस गया। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने जो माता पिता थे उनके हिरण जन्म में, उनसे वो दूर रहने लगा। कालंजर पर्वत को उन्होंने छोड़ दिया और वो पुल्हा आश्रम आ गया। वहां पे पुल्हा आश्रम में जहां पे साधु संत रहते थे, तपस्या किया करते थे, वहां रहने लगा और केवल सूखी घास खाता था, कहीं उसे घास से आसक्ति ना हो जाए। और इस प्रकार से आध्यात्मिक भावनाओं का तीव्र अनुभव उसको हुआ और उस हिरण शरीर में उसने उस जब उस शरीर को त्यागा तो अगले जन्म में उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और फिर वो पुनः जो है भगवान के भक्ति करने लगे और अगले जन्म में भगवान के धाम गए। तो हिरण का शरीर क्यों मिला था, पश्चाताप करने के लिए, जागरूक करने के लिए दिया गया था। और हिरण शरीर में होते हुए भी भरत महाराज को सारे वेदों का ज्ञान था, पिछले जन्म में उनसे क्या गलती हुई उसका भी ध्यान था, है ना। तो ये भगवान के भक्तों पर विशेष कृपा है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी त्यागते नहीं है, उसको ऐसा मौका प्रदान करते हैं। चलिए अभी हम अपने अध्याय 6 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। दो श्लोक भगवान बताते हैं, 46 नंबर और 47 नंबर। देखिए जैसा पिछले हमने अभी चर्चा किया कि किस प्रकार वो हिरण से आसक्त हो गए, ऐसे ही आजकल लोग अपने घरों पे कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, कुत्तों से आसक्त हो जाते हैं, बिल्लियों से आसक्त हो जाते हैं, बहुत बुरी गति है उनकी भी। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। हे अर्जुन, योगी पुरुष जो है वो तपस्वी से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है, सकाम कर्मी व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, योग करो। और कौन सा योग, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समययुक्त तमोमतः। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान यहां पे भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि भक्ति योगी जो है वो सारे योगियों में श्रेष्ठ है, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, पर भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वास्तव में जो अन्य तीन योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, तीनों के बारे में एक एक श्लोक है। तो कर्मियों के लिए क्या बोला था भगवान ने, थर्ड श्लोक में, थर्ड अध्याय में बोला था, तीसरे चैप्टर में, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्रा लोकोयम कर्म बंधना, मेरे लिए कर्म करो, यानी वो भक्ति। ऐसे ही ज्ञानियों के लिए क्या बोला भगवान ने, सातवें अध्याय में बोलेंगे, बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो जान लेता है कि वासुदेव जो है वो सब कुछ है, उसको बहुत बहुत जन्म के ज्ञान के बाद पता चलता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो वो क्या करेगा, वो भी भक्ति करेगा। और ठीक वैसे ही यहां पे भी भगवान बता रहे हैं योगी, योगियों के बारे में, योगी नाम अभी सर्वेशा मदगते नांतरात्मना, यानी अष्टांग योगी, वो उससे भी श्रेष्ठ कौन है, भगवान का भक्ति योगी है। तो भगवान का भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति करने वाला, चाहे कोई अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्त जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हर, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, सब यही बताते हैं कि कहां आना है, भगवान के चरण कमलों की शरण में आना है और कोई रास्ता नहीं है। तो आज का रिवीजन सबसे पहले हमने छठे अध्याय में वन टू नाइन श्लोक में हमने पढ़ा कि मन जो है वो किस तरीके से शत्रु और मित्र का कार्य करता है। फिर हमने अष्टांग योग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से किया जाता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, वो हमने जाना 10वें श्लोक से लेकर 36 नंबर श्लोक तक। सफलता और असफलता क्या होती है, एक योगी जो है अगर पतन हो जाता है उसका तो क्या होता है, कम अवस्था में पतन हो जाता है तो क्या होता है, और काफी ज्यादा दिनों तक वो योग करता रहता है उसके बाद पतन होता है तो क्या होता है, वो हमने जाना। और अंत में भगवान ने बताया कि वास्तविक योगी कौन है, जो मेरा भक्त है वही वास्तविक योगी है। तो इस प्रकार से ये छठा अध्याय जो है यहाँ पे समाप्त होता है।